दिनभर तारीख 29 दिसंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। मुंबई आग हादसे में 14 लोगों की मौत को लेकर पब चलाने वालों पर केस।
इसकी जांच करने के आदेश बीएमसी कमिश्नर को दिए हैं। 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जो इसके मालिक है इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है।
मुंबई की आग ने खुशियों के जश्न को किस तरह तबाही की राख में बदला, आंखों देखा हाल।
काफी शोरगुल था, नाच रहे थे ये लोग, उसी ग्रुप में से कई सारे लोग और वो लड़की खुद जिसने अपनी बर्थडे पार्टी वहाँ होस्ट की थी, हादसे में की भी मौत हुई है।
और बीबीसी वर्षांत कार्यक्रम में आज रेहान फजल से सुनिए मीना कुमारी के अभिनय और मोहब्बत की दास्तान।
जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बना करके मुमताज महल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे कमाल अमरोही ने पाकिजा बना करके मीना कुमारी के लिए ताजमहल खड़ा किया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। मुंबई के लोअर परेल इलाके की एक इमारत में आज तड़के आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग झुलसकर जख्मी हो गए। बीएमसी आपदा प्रबंधन के मुताबिक आग में झुलसे लोगों को केएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 की हालत गंभीर है। ये आग इलाके की कमला मिल्स कंपाउंड में लगी थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को धता बताते हुए उत्तर कोरिया को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की। चीन की ओर से इस आरोप को खारिज किया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति के ट्वीट्स का जिक्र किए बिना चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि मीडिया के जरिए आधारहीन दुष्प्रचार करना आपसी विश्वास और सहयोग के लिए फायदेमंद नहीं है। दक्षिण कोरियाई प्रशासन ने कहा था कि हांगकांग से पंजीकृत एक जहाज ने अक्टूबर में गुप्त रूप से एक उत्तर कोरियाई जहाज को परिष्कृत तेल पहुंचाया था, लेकिन चीन का कहना है कि वह जहाज किसी भी चीनी पोर्ट पर अगस्त के बाद से पहुंचा ही नहीं। चीनी प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, जहां तक मीडिया की खबरों की बात है, खासतौर से चीनी जहाज की ओर से उत्तर कोरिया की समुद्री सीमा में 19 अक्टूबर को तेल ट्रांसफर करने का जो संदेह है, सच यह है कि वह जहाज अगस्त के महीने से एक बार भी किसी चीनी बंदरगाह पर नहीं गया और इसका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। हमें ये जानकारी नहीं है कि ये जहाज किसी और देश के बंदरगाह पर गया या नहीं। ये थे चीनी प्रवक्ता हुआ चुनयिंग के शब्द। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने इस विचार को खारिज किया है कि पूर्व कैतलन नेता कार्लेस पुजदिमोन कैतलोनिया की नई सरकार को विदेश से ही चलाने की कोशिश कर सकते हैं। पुजदिमोन अभी बेल्जियम में आत्मनिर्वासन में है क्योंकि कैतलोनिया में आज़ादी के एक तरफा ऐलान के बाद स्पेन में उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। इसके साथ ही कैतलोनिया की तत्कालीन सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद इसी महीने हुए चुनावों में एक बार फिर अलगाववादी दलों को बहुमत मिला और पुजदिमोन की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पुजदिमोन का कहना है कि वह कैतलोनिया लौटकर अपनी पुरानी भूमिका निभाना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक अदालत ने कहा है कि नेशनल असेंबली राष्ट्रपति जैकब जुमा को जनता के धन के दुरुपयोग के मामले में जवाबदेह ठहराने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरी नहीं उतरी है। अदालत ने कहा है कि संसद को अब एक ऐसे तंत्र के साथ आना चाहिए जिसके जरिए राष्ट्रपति जुमा को पद से हटाया जा सके। इस फैसले को पढ़ते हुए जज क्रिस जाफ्टा ने कहा कि संसद ने सवालों पर सत्र रखा, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान भी कराया, लेकिन ये उपाय संविधान के संबंधित अनुच्छेद के लिहाज से नाकाफी थे। उन्होंने कहा,
The assembly simply debated and voted on the motion. It did not satisfy itself.
संसद ने सिर्फ बहस की और प्रस्ताव पर मतदान किया। संविधान के उल्लंघन पर यह प्रस्ताव आधारित था और इससे संविधान का संबंधित अनुच्छेद की अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, लिहाजा हम ये मानते हैं कि असेंबली ने राष्ट्रपति की जवाबदेही तय नहीं की जैसा कि अनुच्छेद 89 के तहत किया जाना था। ये थे जज क्रिस जाफ्टा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान में सरकारी चेतावनी के बाद लगातार दूसरे दिन भी राष्ट्रपति रूहानी के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। राजधानी तेहरान के गवर्नर जनरल ने कहा है कि धरना या प्रदर्शन के लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोशिशों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। गुरुवार को मशहद शहर में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। एक अधिकारी ने बताया कि तीखे नारे लगाने की वजह से 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति रूहानी के समर्थकों ने इन प्रदर्शनों की ये कहते हुए आलोचना की है कि इसका फायदा वे कट्टरपंथी उठा सकते हैं जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। मिस्र के प्रशासन का कहना है कि काहिरा के दक्षिण में हेलवान के एक चर्च पे हुए हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। 1 जश्न की रात जो मातम में बदल गई। बीती रात तारीख बदलने के कोई आधे घंटे बाद मुंबई के पॉश लोअर परेर इलाके की एक 4 मंजिला इमारत आग की लपटों में गिर गई। इमारत के ऊपरी हिस्से में एक पब में भारी भीड़ थी। कई लोग पार्टी कर रहे थे, उनमें से 11 महिलाओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई, करीब 20 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक हादसे को लेकर 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और पब चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूरी रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता भूमिका राय से।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज जब कमला मिल्स कंपाउंड का दौरा करने पहुंचे तो आग की लपटें ठंडी हो चुकी थीं। धुएं की लकीरें भी गुम थीं, लेकिन तबाही के निशान हर तरफ थे। 11 महिलाओं समेत 14 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मीडिया को बताया कि सरकार भी एक्शन में है।
इसकी जांच करने के आदेश बीएमसी कमिश्नर को दिए हैं। 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। इसमें जो इसके मालिक है, चलाने वाले हैं, आईपीसी के तहत और रिलेवेंट सेक्शंस उनके ऊपर लगाए जाएंगे। खासकर इन लोगों की मृत्यु के लिए वो जिम्मेदार है।
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अगर बीएमसी के अधिकारियों की गलती मिली तो उनके खिलाफ भी फौजदारी का मामला दर्ज किया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि इमारत में आग से निपटने के इंतजामों पर ध्यान ही नहीं दिया गया था।
ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। हमें 12:30 बजे ये वाकया था, वो पता चला कि बाहर आग लगी है। एग्जिट जो फ्रंट का डोर था वो पूरी तरह से बंद था। 5 मिनट के बाद ही ये पूरा छत है वो नीचे गिर गया। यानी कि अगर 5 मिनट भी हम लोग लेट हो जाते तो हम में से शायद ही कोई बाहर आ पाता और शायद ही कोई बच पाता।
इस मामले में लापरवाही का मामला आज लोकसभा में भी उठा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट सोमैया ने कहा,
ना मुंबई महापालिका, उनके अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, फायर ब्रिगेड ऑडिट नहीं होता है। उसी प्रकार से उसको परमिशन जो दी गई पूरा अनऑथोराइज था। इसलिए दोनों मॉल का स्पेशल ऑडिट हो, फायर इंस्पेक्शन हो और लोगों के आम आदमी की जान की रक्षा की जाए।
उधर बीएमसी पर नियंत्रण रखने वाली शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की।
ये बड़े लोगों के अंदर होटल है, ये कोई छोटे नहीं, इनके भी दोस्त लोग हैं वहाँ, हमारे हो सकते पता नहीं। तो मैं इतना खुला हूँ इस रास्ते में और मैं मांग करता हूँ इस पर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए।
लोअर परेल के जिस इलाके में आग लगी वो एक कमर्शियल इलाका है, वहाँ कई अहम दफ्तर हैं, कई न्यूज चैनलों के भी ऑफिस हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। मुंबई के वन अबब नाम के जिस पब में आग लगी वहाँ देर रात तक खुशियों की महफिल सजी थी। बीबीसी गुजराती सेवा के संपादक अंकुर जैन भी वहां मौजूद थे। अब से थोड़ी देर पहले मैंने अंकुर जैन से बात की और उस वक्त की स्थिति के बारे में पूछा।
ये मुंबई का कमला मिल इलाका जो है, यहाँ पे करीबन 30-40 रेस्टोरेंट हैं। मुंबई का काफी अपस्केल इलाका है। हम इस रेस्टोरेंट में लेट पहुंचे थे, ये जैम पैक्ड था, तो हमें उस वक्त होटल वालों ने हमें वेट करने के लिए कहा गया कि आपको कुछ ही मिनटों में टेबल मिल जाएगी। तो रात में करीबन 12:15 बजे थे, तब अचानक एक व्यक्ति ने चिल्लाकर सभी से कहा कि आग लगी है, इशारा किया कि ये फायर एग्जिट है, यहां से नीचे की ओर दौड़ जाएं और ये प्रीमाइसेस खाली करें। 100 के करीब लोग थे उस वक्त रेस्टोरेंट में। ऐसा लग रहा था कि आग जो है कंट्रोल की जा सकती है। ये जो रेस्टोरेंट था ये रूफटॉप रेस्टोरेंट था और इसकी जो एक फॉल्स सीलिंग बना रखी जो किसी ऐसे मटेरियल से बनाई थी जो फ्लेमेबल मटेरियल था, और कुछ ही सेकंड में जो आग जो सिर्फ एक कोने में दिख रही थी पूरे ही रेस्टोरेंट में फैल गई। भगदड़ का माहौल हो गया, सभी लोग फायर एग्जिट की तरफ भागने लगे। हम क्योंकि फायर एग्जिट के थोड़ा सा नजदीक में खड़े थे, धक्का लग के ही हम फायर एग्जिट तक पहुंचने लगे। फायर एग्जिट का जो इलाका जो था, जो सीढ़ियों तक जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते में इतना सामान पड़ा था, इतना जंक पड़ा था, वहां पे भी बुरी तरह आग लग गई और वो जो फॉल सीलिंग थी वो आग लग के नीचे गिरने लग गई। सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे बिल्डिंग में तो हमें आवाजें आ रही थी लोगों के चिल्लाने की, बॉम्ब गिरे हो ऐसी ही आवाजें आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था शायद सिलेंडर या सिलेंडर जैसी कोई चीज फटी है रूफ टॉप पे। ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 3-4 मिनट लगे हमें नीचे उतरने में। कई सारे लोग उस वक्त ये चिल्ला रहे थे कि हम मेरी पत्नी ऊपर है, कह रहा था कि मेरे भाई ऊपर है, तो इस तरह की आवाजें आ रही। हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है। ये मुंबई का वो इलाका है जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए कई सारे क्लियरेंस लाइसेंसेस की जरूरत होती है, अमूमन जिस तरह के लाइसेंस ही होते, क्योंकि ये ज्यादा प्राइम इलाका है। ये जो रेस्टोरेंट था मुझे नहीं लगता कि इनके पास किसी भी तरह का लाइसेंस होगा, अगर और था भी तो किस बिना पे उन्हें वो लाइसेंस दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन में एग्जिट करने के लिए या हैंडल करने के लिए किसी भी तरह की वो पुख्ता इंतजाम या किसी भी तरह की कोई इंतजाम नहीं।
रेस्टोरेंट के कर्मचारी या अधिकारी वहाँ रहे होंगे, वो शायद ऐसी स्थितियों के लिए तैयार भी नहीं थे।
उनके लिए मुमकिन नहीं था कि इतनी बड़ी आग को वो किसी भी तरह से काबू कर सके। आपको बताएं कि ये जो मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, जो एक महिला की बात आ रही है कि जो जिनकी बर्थडे थी और बर्थडे पार्टी जिन्होंने इस रेस्टोरेंट में दी थी, और हम जो कि वेट कर रहे थे, जाहिर तौर पे जब हमें टेबल नहीं मिली थी तो बाकी लोगों के टेबल पे क्या चल रहा है ये हम एक कोने में खड़े होकर देख रहे थे। तो ये एक ग्रुप था, हमें दिख रहा था कि ये लोग किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफी शोरगुल था, नाच रहे थे ये लोग। और अचानक आज सुबह जब हमने ये खबर पड़ी कि उसी ग्रुप में से कई सारे लोग और वो लड़की खुद जिसने अपनी बर्थडे पार्टी वहाँ होस्ट की थी, वो भी इस हादसे में की भी मौत हुई है, तो ये बड़ा ही भयानक है।
ये थे अंकुर जैन। उधर पब की ओर से जारी बयान में हादसे पर खेद जताया गया है और कहा गया है कि उन्होंने सुरक्षा मानकों का पालन किया था।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब वर्षांत कार्यक्रम की आज की कड़ी। एक बेहतरीन अदाकारा, 32 वर्षों तक जिनका जादू भारतीय सिने जगत पर छाया रहा, आंखों में बसे दर्द ने उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिलाया, तो अभिनय की ऊंचाई के दम पर वह कहलाई भारतीय फिल्मों की पाकीजा। हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की, जिनके दिल में दर्द था तो बेपनाह मोहब्बत भी। उनके इश्क और अदाकारी की दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल।
ये नूर कैसा है राख का सरन पहने, बर्फ की लाश है लावे का सा बदन पहने, गूंगी चाहत है रुसवाई का कफन पहने, हर एक कतरा मुकद्दस है मैले आंसू का, एक हुजूम अपाहज है आबे कौसर पर।
ये आवाज है उस मशहूर अदाकारा की जिसकी पूरी जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर भारतीय औरत की ट्रेजेडी को उतारते हुए गुजरी, यहां तक कि उसे अपनी खुद की निजी ट्रेजेडी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन ये कहना कि मीना कुमारी के अभिनय में ट्रेजेडी के अलावा और कोई शेड नहीं था, उनके साथ बेइंसाफी होगी। फिल्म परिणीता की शांत बंगाली अल्हड़ नवयौवना को लें, या बैजू बावरा की चंचल हसीन प्रेमिका को, या फिर साहिब बेबी और गुलाम की सामंती अत्याचार झेलने वाली बहू हो, या पाकीजा की साहब जान, सभी ने भारतीय जनमानस के दिल पर अमिट छाप छोड़ी है।
चलते, चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते, चलते, सरे राह चलते, चलते।
1 अगस्त 1932 को जन्मी मीना कुमारी एक अभिनेत्री के रूप में 32 सालों तक भारतीय सिने जगत पर छाई रही। बेहद भावुक और सदा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर मीना कुमारी की जिंदगी दूसरों को सुख बांटते और दूसरों के दुख बटोरते हुए बीती थी। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही बताते हैं,
मीना कुमारी साहिबा, उनको कभी एक खूबसूरत चेहरे के तौर पर लोगों ने एड्रेस नहीं किया, जैसे कि मधुबाला के लिए किया गया वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन, या नरगिस जी के लिए लोगों ने कहा फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन स्क्रीन। इस तरीके से मीना जी के लिए लोगों ने द ग्रेट ट्रेजेडियन की, उनके कला को देखते हुए, उनके आर्ट को देखते हुए, और उन्होंने उस ट्रेजेडी को उन्होंने अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया, और वो मास्क ऐसा पहन लिया उन्होंने कि लोगों ने ये समझा कि जो जैसे किरदार वो फिल्मों में कर रही है ऐसी वो जिंदगी में है। लोगों ने भी समझ लिया और खुद उन्होंने भी समझ लिया।
सो जिया में समाए गयो रे के मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझे आए गयो रे, हर आहट पे समझे आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी।
1949 में मीना कुमारी जब पहली बार कमाल अमरोही से मिली, उस समय वो शादीशुदा थे। उनकी एक फिल्म महल काफी हिट हो चुकी थी, कमाल मीना को अनारकली फिल्म में लेना चाहते थे। इस सिलसिले में वो उनके घर आने लगे और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। इस बीच एक बार पुणे से आते समय मीना कुमारी की कार का एक्सीडेंट हो गया, मशहूर पत्रिका आउटलुक के संपादक रहे विनोद मेहता ने मीना कुमारी की जीवनी लिखी है। मीना कुमारी एक क्लासिक बायोग्राफी। विनोद मेहता लिखते हैं,
उनका प्यार मौसमी के जूस से शुरू हुआ था। जब कमाल अमरोही मीना कुमारी को देखने के लिए पूना के अस्पताल पहुंचे तो उनकी छोटी बहन ने उनसे शिकायत की कि आपा जूस नहीं पी रही हैं। कमाल ने गिलास अपने हाथों में लिया, मीना के सिर को पलंग से उठाया और गिलास को उनके मुंह के पास ले गए। मीना ने एक घूंट में ही सारा जूस खत्म कर दिया। हर हफ्ते कमाल सायन से पूना ड्राइव कर मीना से मिलने पहुंचते। फिर उन्हें लगने लगा कि हफ्ते में एक दिन काफी नहीं है। जिस दिन उन्हें नहीं मिलना होता वो एक दूसरे को खत लिखते, हर रोज एक खत, लेकिन उन खतों पर कोई टिकट नहीं लगाया जाता। वो खत वो एक दूसरे को खुद अपने हाथों से देते।
इसके बाद अस्पताल में ही उनकी कई मुलाकातें हुई। कमाल अमरोही ने उन्हें नाम दिया मंचू और वो कमाल अमरोही को चंदन नाम से पुकारने लगी। विनोद मेहता आगे लिखते हैं,
फिर इन दोनों की टेलीफोन पर लंबी लंबी बातें शुरू हुई। अमरोही ठीक 11:30 बजे रात को मीना कुमारी को फोन लगाते और सुबह 5:30 बजे दोनों रिसीवर रखते। रात में इतनी देर बात करने की वजह से ही शायद मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को रात में नींद न आने की बीमारी लग गई।
तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा।
24 मई 1952 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी कर ली। उस समय कमाल अमरोही की पहली पत्नी अमरोहा में रहा करती थी। जब गर्मियों की छुट्टी हुई तो उन्होंने अपने बेटे ताजदार को अपनी सौतेली माँ से मिलने मुंबई भेजा। जब वो वहां पहुंचे तो कमाल अमरोही की तबीयत नासाज थी, उन्हें बुखार चढ़ा हुआ था। ताजदार अमरोही याद करते हैं,
और मैंने अंदर जो पिक्चर देखी जो मुझे तक जहन से नहीं उतरती वो ये देखी कि मेरे बाबा लेटे हुए बिस्तर पर, सर तकिए पर उनके, और छोटी उम्मीद सिराने बैठी हुई थी व्हाइट साड़ी में, और उनके माथे पर वो एडुकुलम में भिगोया हुआ रिजेक्टेड कुर्तों का जो कपड़ा होता है वो उनके माथे पर रखा जा रहा था कूल डाउन करने के लिए, और एक खादमा जो थी वो उनके तलवे को घस रही थी। मेरी इस परेशानी को छोटी अम्मी ने पढ़ लिया कि मैं बहुत हैरान हैरान देख रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। तो बाबा भी मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं, मेरा नाम लिया बहुत मीठे तरीके से और मैं और करीब गया। फिर मुझसे कहा और आओ करीब, तो मैं वो तख्त पर जिस पर वो गद्दा बिछा हुआ था और गौ तकिए लगे हुए थे मैं वहां तक पहुंच गया, कहने ऊपर आओ। और जब मैं पहुंच गया उनके करीब तो उन्होंने मुझे अपने पास समेट लिया और उन्होंने फिर मुझे अपने सीने से लगाया, बुजुम से लगाया, और छोटी अम्मी ने मुझे ये कहा मैं तुम्हारी छोटी अम्मी हूं।
लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही के वैवाहिक जीवन में कुछ दिनों बाद ही दरार दिखाई देनी शुरू हो गई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की अनुमति तो दे दी लेकिन उन पर 3 शर्तें लगाई।
पहली शर्त थी कि मीना कुमारी रोज 6:30 बजे तक घर वापस लौट आए। दूसरी शर्त थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन के अलावा कोई पुरुष नहीं बैठेगा। और उनकी आखिरी शर्त थी कि मीना कुमारी हमेशा अपनी ही कार में बैठेंगी जो उन्हें स्टूडियो ले जाएगी और फिर वापस घर लाएगी।
लेकिन जिस दिन इन शर्तों पर मीना कुमारी ने दस्तखत किए उसी दिन से उन्होंने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहली घटना तब हुई जब शारदा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने मीना कुमारी को एक पार्टी में आमंत्रित किया।
हुआ यूं कि एक रूसी फिल्म प्रतिनिधिमंडल मुंबई आया हुआ था। राज कपूर उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह कर रहे थे। मीना कुमारी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने पति को फोन पर कहा कि वो देर से लौटेंगी। कारण उन्होंने नहीं बताया बल्कि ये कहा कि उनकी शूटिंग देर तक चलेगी। अगले ही दिन इत्तेफाक से कमाल अमरोही की मुलाकात उन मेहमानों से हो गई जो राज कपूर की पार्टी में मौजूद थे। उनसे उन्हें पता चला कि उनकी बीवी शूटिंग में व्यस्त न होकर पार्टी के मजे ले रही थी। जब वो घर लौटी तो उन्होंने इस बारे में कमाल को कुछ नहीं बताया। बाद में जब कमाल ने उनसे इस हानि रहित धोखे का जिक्र किया तो मीना कुमारी ने कहा कि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी।
बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक दिन कमाल अमरोही के सचिव पाकर ने मीना कुमारी को अभिनेता प्रदीप कुमार की कार से उतरते हुए देख लिया। बाद में कुछ और घटनाएं हुईं और मीना कुमारी ने यह तय किया कि वो कमाल अमरोही के घर कभी वापस नहीं जाएंगी।
वो बहाना तलाश कर रही थी घर से जाने का, बिकॉज शी वॉज वॉन्टेड टू बी अ फ्री बर्ड। छोटी अम्मी घर से चली गई, बाबा ने एक शौहर होने के नाते अपना फर्ज निभाया कि जब वो छोड़कर गई तो महमूद साहब के घर पे चली गई थी। तो बाबा गए, छोटी अम्मी कमरे में अपने आप को अंदर लॉक करके बैठी हुई थी। बाबा दरवाजा पीटते रहे, मंजू बाहर आओ, मुझसे बात करो, तुम्हें क्या शिकायत है, मुझे शिकायत बताओ। करते रहे। फिर महमूद साहब ने कहा कि भाईजान कमाल साहब, ये तो अभी कुछ नहीं होगा, आप ऐसा कीजिए, ये ठंडी हो जाएंगी, बाद में आप आ जाइए। उनका नहीं, देर हो जाएगी, अभी तो घर बात घर में है, वहां से हट करके यहाँ घर में आई है। उनका ठीक है। तो फिर बाबा ने दो बार तीन बार चौक चार बार दरवाजे को ठोका और फिर कहा कि मंजू तुम अंदर हो और मुझे सुन रही हो, और सुनो मैं जा रहा हूँ, मैं अब लौट कर नहीं आऊंगा। मैंने तुमको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं मानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं और खुले रहेंगे, जब चाहे तुम आ जाना।
हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम।
इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच की दूरी को पाटने के बजाय और बढ़ा दिया। विनोद मेहता लिखते हैं,
सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को इरोज सिनेमा में एक फिल्म के प्रीमियर पर आमंत्रित किया था। सोहराब ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मीना कुमारी का परिचय कराते हुए कहा, ये मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी हैं और ये इनके पति कमाल अमरोही हैं। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को नमस्ते कहते, अमरोही ने कहा, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी पत्नी है, मशहूर फिल्म अदाकारा मीना कुमारी। इतना कहकर वो सिनेमा हॉल से बाहर चले गए। मीना कुमारी को अकेले बैठकर पूरी फिल्म देखनी पड़ी।
लेकिन निजी जीवन की इस खलबली ने फिल्मों में उनके अभिनय पर कोई असर नहीं दिखाया। उन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्मों में अभिनय किया और फिल्म समीक्षकों की वाहवाही लूटी। मीना कुमारी को नजदीक से जानने वाले और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार टाक बताते हैं,
मीना जी की बहुत फिल्में, हर फिल्म में एक अलग अलग कलर है। देखिए जैसे दिल एक मंदिर, अगर आपने देखी हो तो आप दिल एक मंदिर देखिए, उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा देखिए, और मेरी फिल्म की तो खैर कोई गिनती नहीं आती, उनके लिए बहुत छोटी फिल्म थी, और उनकी कितनी फिल्मों के नाम परिणीता देखिए, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो आरती देखिए, क्या क्या फिल्मों में काम किया उन्होंने, एवरी करेक्टर जो भी किया उन्होंने बहुत अलग तरह से अदा किया है और उसने लोगों को दिल को छुआ है। इतने बरस तक लोगों के दिलों पर राज करना कोई मजाक तो नहीं है, कुछ तो बात होती है जिसकी पर्दादारी।
साहिब बीबी और गुलाम,
ओ माशाल्लाह, वो कमाल फिल्म थी, कमाल फिल्म। एक तो गुरुदत्त साहब ग्रेट डायरेक्टर, दूसरा उसके अंदर बहुत खूबसूरत सीन्स, बहुत खूबसूरत स्टाइल पकड़ा। दूसरा एक मुझे एक जो बहुत पसंद है उस फिल्म की बात, कि रहमान साहब जा रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए जिससे मोहब्बत करते थे, लेकिन जब एक पलंग पर उनको जब रोकते हैं वो गाना गा के, न जाओ सैया छुड़ा के भैया, ऐसा मैंने गाना जिंदगी में किसी डायरेक्टर का किया हुआ नहीं देखा। व्हाट ए कॉन्सेप्ट एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस, और जिस तरह से वो उसको रोक रही थी, वो परफॉर्मेंस कोई और हीरोइन तो दे ही नहीं सकती, आज तो कोई नहीं है ऐसी।
न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी, मैं चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी।
कमाल अमरोही और मीना कुमारी भले ही पति और पत्नी के रूप में एक दूसरे से अलग रह रहे हों, लेकिन अभिनेत्री के तौर पर वो हमेशा कमाल अमरोही की फिल्मों में काम करने के लिए उपलब्ध थी। यही वजह है कि अमरोही से 5 सालों तक अलग रहने के बावजूद उन्होंने उनकी फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी करने का फैसला किया।
जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बना करके मुमताज महल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे कमाल अमरोही ने पाकीज़ा बना करके मीना कुमारी के लिए ताजमहल खड़ा किया और उनको अमर कर दिया। जब जब फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाएगी, पाकीज़ा विल नेवर बी इग्नोर्ड। कंट्रीब्यूशन तो इसमें राजकुमार साहब का भी है, अशोक कुमार साहब का भी है, वीना जी का भी है, नादरा जी का भी है, सिनेमाटोग्राफर का भी है, म्यूजिक डायरेक्टर का भी है, सबका है, बहुत लोगों का है, बट 3 नाम रहेंगे जिंदा, कमाल अमरोही, मीना कुमारी, पाकीज़ा।
ढूंढ लाना।
इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी के साथ एक दिलचस्प घटना घटी। विनोद मेहता लिखते हैं,
आउटडोर शूटिंग पर कमाल अमरोही अक्सर दो कारों पर जाया करते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पास उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। अमरोही ने कहा कि हम रात कार में सड़क पर ही बिताएंगे। उनको पता नहीं था कि ये डाकुओं का इलाका है। आधी रात के बाद करीब एक दर्जन डाकुओं ने उस कार को घेर लिया। उन्होंने कार में बैठे लोगों से कहा कि वो नीचे उतरें। कमाल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है मेरी कार के पास आए। थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पायजामा और कमीज पहने हुए एक शख्स उनके पास आया। उसने पूछा, आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूँ और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए हम यहाँ रुके पड़े हैं। डाकू को लगा कि वो राइफल शूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसे बताया गया कि ये फिल्म की शूटिंग है और कार में मीना कुमारी भी बैठी हुई हैं, तो उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने एकदम संगीत, नाच और खाने का इंतजाम कराया। उन्हें सोने की जगह दी और सुबह उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवा दिया। चलते चलते उसने मीना कुमारी से कहा कि वो नुकीले चाकू से उसके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दे दें। जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिए। अगले शहर में उन्हें पता चला कि उन्होंने मध्य प्रदेश के नामी डाकू अमृतलाल के साथ अपनी रात बिताई थी।
लेकिन शराब पीने और तंबाकू खाने की लत ने मीना कुमारी के स्वास्थ्य को इस बुरी तरह से बिगाड़ा कि वो उससे कभी उबर नहीं पाई। उनके अंतिम दिनों के साथी और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार टाक बताते हैं,
6 दिन तक तो बहुत अच्छी बनी वो फिल्म, उसके बाद वो बीमार हो गई। अब वो मुझे इंसिस्ट करती थी, नहीं तुम शूटिंग करो, मेरी पिक्चर बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे, अभी कैसे मैं करूँ। मैं उनकी इज्जत भी बहुत करने लगा था, हमारा कुछ इतना इमोशनल रिश्ता हो गया था कि एक दूसरे को तकलीफ देना की सोच भी नहीं सकते थे, फिर भी मानी नहीं वो। कैसे कैसे मैंने उन्हें पकड़ पकड़ के, यानी शॉट दे के, गिर सकती अगर उनको पकड़नी थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी क्लाइमैक्स के टाइम पर, तो पकड़ के पीछे से बैठता था, कैमरा ऑन कर रहता था, शॉट होता था, मैं पकड़ के उनको कुर्सी पर बिठा देता था। ऐसी ग्रेट महान हस्ती, किस तरह उनको प्यार था फिल्मों से, काम से, और इस मामले में मेरी हेल्प भी थी। मैं उनका एहसान मंद हूँ कि उन्होंने मुझे डायरेक्टर बनाया पहले, कि नहीं तुम करोगे तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। That was the first sentence उन्होंने कहा मुझे कहानी के बाद।
आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। नर्सिंग होम के कमरा नंबर 26 में मीना कुमारी के आखिरी शब्द थे, आपा आपा मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही उनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने उन्हें सहारा दिया, वो कोमा में चली गई और फिर उससे कभी नहीं उभरी।
जिस दिन उनकी डेथ हुई थी आई वाज देयर, लेकिन वो जब खबर इस तरह से फैली, बेहोश हो गई थी, तो अल्ताफ बाबा ने सबको फोन कर दिया था, फिर सारे लोग आ गए, फिर वहाँ से उनका कब्रिस्तान ले गए वायकला, वहाँ दफनाया, तो सब लोग एक एक मुट्ठी मिट्टी डाल के जा चुके थे और मैं आखिरी बंदा था। तो बोले भाई बंद करना है, तो लेट हो गए थे नाइट को, तो मैंने भी एक मुट्ठी डाली। तब तक मैं रोया है, डेथ हो गई, अनाउंस हो गया, डॉक्टर आए, सब कुछ हो गया, ले गए, जब तक मेरी आंख में आंसू आए नहीं, मैं पत्थर हो गया एकदम। वहां जाके जब वो मिट्टी मैंने डाली, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसी मिट्टी का पहला दाना जब उनके ऊपर गिरा, तब सब मेरी आंख में इतनी जोर से आंसू आए कि मैं खुद को रोक नहीं सका। रास्ते में आते आते एक शेर आया, चांदनी मर गई, रोशनी मर गई, सारी शमे बुझाकर चले आए लोग, चादरे गुल से छिलता था जिसका बदन, उसको मिट्टी उड़ा के चले आए।
आवाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब मेरी कहानी
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान साहब की प्रस्तुति पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र और अभिजीत श्रीवास्तव ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।